أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کلام جدید میں ہماری بحث الحاد کے موضوع پر چل رہی تھی اور اہم ترین اسباب بیان کیے جا رہے تھے اور پھر ان میں سے بعض اہم جو اسباب تھے ان کی جو ہے وہ نقد و بررسی اور ان کی تحقیق جو ہے وہ پیش کی جا رہی تھی کہ یہ کس حد تک درست ہیں. آج جو ایک مسئلہ پیش کرنا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگرچہ کوشش تو یہ تھی کہ پہلے جو منکرین خدا ہیں ان کو جواب دیا جائے اور بنیادی ترین جو ان کے مبنے تھے ان پہ گفتگو ہو بھی گئی ہے. جس طریقے سے وہ آ کر باقی مسائل انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, مثلا نیچرلزم ہونا, اس کا قائل نیچرلسٹ ہونا, نیچرلزم کے قائل ہونا اور حس کے اندر ہر چیز کو خلاصہ کر دینا, اور اس طریقے سے مثلا خدا کو باقی علتوں کے مقابل میں کھڑا کرنا, طولی طور پہ اس کو نہ ماننا, مثلا اس طریقے سے جو ہے وہ خدا کا انکار کر رہے تھے. اور آپ کو تفصیل سے بیان کیا کہ یہ ایک مبنا بھی ان کا درست نہیں ہے. ابھی بحث باقی ہے منکرین خدا کے ساتھ. ایک بحث جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں آج کے درس میں وہ ان افراد کے ساتھ ہے کہ جو خدا کے وجود کو تو کسی حد تک مان لیتے ہیں اور اس کائنات کے خالق ہونے کے عنوان سے بھی مان لیتے ہیں, لیکن خلق کے بعد پھر خدا کے کسی بھی نقش اور کردار کے قائل نہیں ہیں, جس کو ہم کہہ لیں کہ ربوبیت الہی کے منکر ہیں. اور آپ کو جب الحاد کے مختلف طبقات بیان کیے تھے یاد ہوگا آپ کو, ان میں سے ایک جو الحاد کا الحاد کی کیٹیگری تھی وہ یہی تھی کہ اصل وجود خدا کو تو مانتے ہیں لیکن ربوبیت الہی کے منکر ہیں. اور ہم جو خدا کے قائل ہیں اور جس چیز کے اثبات کے در پہ ہیں وہ خدا کا وجود بھی ہے اور خدا کی ربوبیت بھی ہے, اور ربوبیت بھی اس معنی میں کہ وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اپنا اصلی نقش اور کردار رکھتا ہے. تو لہذا چونکہ یہ بھی ایک الحاد کی ایک اہم ترین کڑی بنتی ہے, یعنی اگرچہ پہلی قسم سے تھوڑی سی کم ہے, چونکہ پہلی قسم جو تھی وہ تو بالکل ہی خدا کے وجود کے منکر ہیں, لیکن دوسرے جو ہیں خدا کو مانتے ہیں لیکن خدا کے نقش و کردار کے قائل نہیں ہے. تو لہٰذا اس پر بھی ذرا گفتگو کرنا ضروری تھی, چونکہ بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سائنس کے ساتھ زیادہ شغف رکھتے ہیں, سائنس ہی کو سب کچھ مانتے ہیں, وہ اگر تھوڑا بہت تدین دکھائیں بھی تو ان کی زبان سے یہ جملے ضرور نکلتے ہیں کہ خدا بند متعال کا کردار اتنا ہی ہے نعوذ باللہ جتنا ایک گھڑی ساز کا ہے, باقاعدہ مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے گھڑی بنانے والے نے ایک سسٹم کے تحت گھڑی بنا دی اور اب اس کا وجود ہی باقی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس سسٹم کے تحت گھڑی کو بنایا گیا تھا وہ اپنے اس سسٹم کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے. تو خداوند متعال کہ وہ اسی طریقے سے وجود کے قائل ہیں کہ خدا ہے, کائنات اس نے بنائی ہے, ایک سسٹم کے تحت بنائی ہے, اب وہ خدا خلق اس کائنات کو اس سسٹم کے ساتھ اب الگ تھلگ ہو کے بیٹھا ہے. بلکہ بعض افراد کا تو یہ جملات ہیں کہ اب وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو بیٹھ کر تماشا کر رہا ہے, یعنی دیکھ رہا ہے, تماشا یعنی فارسی معنی میں کہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کیسی مخلوق بنائی ہے آ کر. حتیٰ ये इलाहाद के साथ फिर किस तरीके से मजीद टैच हो सकता है, वो इस तरीके से आपको बाज़ साइंसदानों के ये स्टेटमेंट भी मिलेंगी। वो कहते हैं कि खुदावंद मुताल ने ये कवानीन बनाकर कायनात के अंदर जो है वो खल कर दिया है, अब खुदा खुद भी इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। यानी अगर कोई कानून में मुदाखलत भी करना चाहे तो अब वो नाउज बिल्ला खुदा के हाथ से निकल चुका है। अभी अब खुदा भी मुदाखले नहीं कर सकता। मिल जाएंगे आपको अगर आप इन स्टेटमेंट्स की तरफ जाएं ढूंढें कि किताबों के अंदर जो है वो नकल हुआ है उनका। मसलन आप अगर ऐसे अफराद के जो खुद खुदा के भी मुनकर हैं वो जब तनजुल करते हैं, मसलन कहते हैं कि ठीक है हम मान लेते हैं कि इस कायनात में एक खुदा की जरूरत है जो इस कायनात को ईजाद करे, लेकिन उसका किरदार फकत इतना ही है कि वो उसको ईजाद करे, बस इससे आगे उसका कोई किरदार नहीं है। अब वो खुदा के वजूद को मानते नहीं हैं, लेकिन क्या करते हैं, अगला मरहला तय करते हैं ताकि हर एतबार से वो मोमिन को रद्द कर सकें। तो लिहाजा इस मबने से जो खुदा के मुनकर हैं वो भी इस्तेफादा कर रहे होते हैं और जिनका ये नजरिया है वो तो बयान कर ही रहे होते हैं उसमें। तो लिहाजा जरूरी था कि इसको भी बयान किया जाए और इस बात में क्या मुगालता पाया जाता है उसको खोला जाए, ताकि इस एतराज और इस इश्काल या सवाल का सदेबाब किया जा सके। अगर हम इस्लाम में मौजूद कलाम की तारीख का मुतालआ करते हैं तो हमें मुतज़िला नाम की एक फ़िरका और एक मकतबा फ़िक्र मिलता है कि जो इसी किस्म ही के नज़रिए का कायल था। यानी अभी तो साइंसदान अपनी साइंस की बुनियाद पर ये बातें कर रहे हैं, लेकिन वो मकतबा फिक्र जो था वो कलामी बुनियादों पर आकर इस मतलब को बयान करता था। वो कहता था कि खुदा खालिक है, इसके कायल हैं हम, लेकिन वो कायल थे इंसान के मौरिद में कि खुदा बंदे मुताल ने इंसान को खल्क कर दिया है, अब इंसान अपने अफआल के अंदर क्या है, मुख्तार है, उसने अपनी मर्जी से अंजाम देना है और इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की खुदा की कोई मुदाखलत नहीं पाई जाती। क्योंकि अगर खुदा बंदे मुताल मुदाखलत करता है तो जबर लाजिम आता है और जबर जो है वो बातिल है। अदवाज़े बस वो कहते हैं कि खुदा ने इंसान को खल्क किया और अपने हाल पर अब छोड़ दिया है, अब इंसान अपने इख्तियार से इस फेल को अंजाम देता है। अपने इस मबने को साबित करने के लिए वो बाज़ मिसालों से सहारा लेते थे, जैसा कि साइंस जो है वो घड़ी की मिसाल से सहारा लेता है। ये बनना और बिना, अमारत और अमारत के बनाने वाला, मतलब हम अपनी ज़बान में उसको मिस्त्री कहते हैं और वो अमारत बनाता है, अरबी में मिस्त्री को बन्ना कहते हैं कि जो तामीर करता है, और बिना यानी वो अमारत। बन्ना और बिना का रबता वो मिसाल के तौर पर लाते थे, कहते हैं देखें इस अमारत का फाइल कौन है, बन्ना, उसने बनाया, उसने वजूद दिया है इसको। लेकिन अब ये बन्ना जो है वो मर भी जाए, अमारत जो है वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है। बस इल्लत और मालूल का जो राबता है ये कहते थे कि इतना ही है कि इल्लत मालूल को ईजाद कर दे और फिर मालूल जो है वो इल्लत के बगैर रह सकता है। हत्ता जो है वो बाज ताबीरें जो है वो इस तरीके से अदा की गईं कि यूं अरबी में जनाब मुल्ला सदरा अपनी किताब अल असफार में जो है वो इसको जिक्र करते हैं, कहते हैं बाज का कहना ये था कि अन्नल बारी लो जाजा अदमहु लमा जर्रा वजूदुल आलम आलम बादहु, कि अगर खुदावंद मुताल नऊज़ बिल्ला मादूम भी हो जाए अगर कायल नहीं थे, लेकिन अगर खुदावंद मुताल मादूम भी हो जाए तो आलम के वजूद पर कोई भी जरर नहीं आएगा। क्यों? लितहक्कुकिल हुदूसे बे एहदासही, चूंकि आलम मोहताज था अपने वजूद में आने के लिए खुदा का, खुदा ने वजूद दे दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है। मतवाजे बस ये फिक्र मौजूद थी आलम इस्लाम में पहले भी, लेकिन वो कलामी बुनियादों पर मौजूद थी। लेकिन साइंस ने आकर इस फिक्र को दोबारा जो है वो जिंदा किया साइंसी बुनियादों के ऊपर, तो लिहाजा इस फिक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है। और यहीं पर ही फलसफा अपना वो वजूद मनवाता है कि अगर इंसान ने फलसफा ना पढ़ा और खुसूसन फलसफा इस्लामी से अगर वो सही तरीके से आशना ना हो तो वो इस किस्म का जवाब नहीं दे सकता, इस किस्म के शुबहे का जवाब नहीं दे पाएगा। आप कोई भी इल्म पढ़े हुए हो, यहां से फलसफे की जरूरत का भी एहसास होता है। खूब, ये था असल एतराज या असल सवाल या असल तस्वीर मसला के जो इस तरीके में इस मैदान में जो है वो मौजूद है। अब देखना ये है कि ये फिक्र ईजाद क्यों हुई है, क्या वजह बनी कि ये फिक्र हुई ईजाद हुई, हालांकि ये मुतकल्लमीन जो हैं ये मुसलमान थे। साइंसदान जो कि खुदा का इनकार कर रहा है या खुदा की रुबूबियत का इनकार कर रहा है वो तो तकरीबन आप यूं समझे कि हर चीज का इनकार कर देता है, लेकिन ये जो मुतकल्लम थे ये मुतदय्यन थे, मोमिन थे, शरीयत इस्लाम के कायल थे, कुरान पर अमल करते थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी इस फिक्र तक क्यों पहुंचे? इनकी फलसफी मुश्किल थी। क्या थी? सवाल ये था, बुनियादी सवाल है ये कि खुदावंदे मुताल ने इस आलम को किस वजह से खल्क किया है, या यूं कहूं जो कि फलसफे में इस तरीके से ताबीर आई है कि कायनात अपने तमाम मौजूदात के साथ इल्लत की तरफ मोहताज किस चीज में है। एहतियाज तो पाई जाती है, एहतियाज किस चीज में है, तो वहां मुख्तलिफ नजरिए जो हैं वो वजूद में आते हैं। मुतकल्लमीन का ये कहना था कि कायनात इल्लत की मोहताज है अपने हुदूस में। हुदूस किसे कहते हैं? ऐसी चीज, हादिस जिसे कहते हैं, ऐसी चीज कि जो पहले ना हो बाद में वजूद में आए, उसको कहते हैं ये हादिस है, और जो हालत होती है उसको कहते हैं हुदूस, यानी नहीं थी अब है, से ये हादिस है। अब कहते हैं हादिस होना सबब है कि मैं इल्लत का मोहताज हूं, ये कायनात इल्लत की मोहताज हो, क्योंकि मैं अदम हूं। अगर मैं तहकुक पैदा करना चाहता हूं, ये कायनात तहकुक पैदा करना चाहती है, तो जाहिर बात है इल्लत होनी चाहिए उसकी, चूंकि अगर वजूद इसका अपना होता तो हमेशा से मौजूद होती, हालांकि हमेशा से तो मौजूद नहीं है, दुरुस्त है। और इज्तिमाई नकीजैन की तरह भी नहीं है कि कभी वजूद में नहीं आ सकती, बस क्या है, एक ही सूरत बचती है कि इसके अंदर सलाहियत है मौजूद होने की, और इल्लत क्या करती है, इसको मौजूद कर देती है कायनात को। मसलन बस एक जो नजरिया पाया जाता है वो है कि एक चीज चूंकि हादिस है लिहाजा मोहताज है इल्लत की। तो अगर हम इस मबने, और मुतकल्लमीन इसी नजरिए को मानते थे, अगर हम इस मबने को मान लेते हैं तो फिर ये जो साइंसदान कहते हैं और जो मुतकल्लमीन कायल थे उनकी बात ठीक बनती है, उनका एतराज ठीक है, रुबूबियत का जो इनकार कर रहे हैं वो इनकार भी ठीक बनता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मालूल अपने हुदूस की वजह से इल्लत का मुहताज होता है, और हुदूस की हालत खत्म हो जाती है कि जब वो तहक्कुक पैदा कर जाए। अब एक कायनात खल्क हो चुकी है, कायनात जब खल्क हो गई है तो उसका हुदूस की हालत क्या हो गई है, खत्म हो गई है, चूंकि वो अदम से वजूद में आना चाहती थी आ गई है, तो अब क्या है बका में इसको कोई जरूरत नहीं है, चूंकि आपने मेलाक जो बयान किया है वो मेलाक हुदूस है, और हुदूस जो है वो खत्म हो गया, वो हालत नहीं रही बाकी, अब वो हादिस नहीं है, यानी वो हुदूस वाली मुराद है, हादिस तो है लेकिन वो मेलाक जिसके तहत ये हादिस बना है वो हालत क्या हो गई है, अब खत्म हो गई है। अब अगर खुदा वंदे मुताल नाउज़ बिल्ला ना भी हो तो कायनात जो है वो बाकी रह सकती है आपके मेलाक के तहत, और साइंसदान ने जो कहा है वो ठीक था। लेकिन फलासफा दकीक तरीन जो है वो अफराद थे, उन्होंने आके मुतकल्लमीन पर एतराज किया, और एतराज करके ये बयान किया कि हुदूस की वजह से हम मोहताज नहीं हैं खुदा के इल्लत के, बल्कि हम चूंकि मुमकिन हैं लिहाजा इल्लत के मोहताज हैं, ना कि हादिस होने की वजह से, और अगर हम इस इम्कान वाली हालत को देखें तो ये इम्कान की हालत जो है वो हमारे शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहती है, चाहे मैं मादूम हूं तब भी मुमकिन हूं, वजूद पैदा कर जाऊं तब भी मुमकिन हो, वजूद पैदा करने के बाद फिर मादूम हो जाऊं तब भी मुमकिन हो, ये इम्कान मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकता, मेरी जात का लाजिमा है, बस चूंकि हम मुमकिन हैं इल्लत के मोहताज हैं। जब मिलाग ये बन गया तो अब जिस तरीके से मुझे वजूद में आने के लिए इल्लत की जरूरत थी, मुझे अपनी बका में भी क्या है, इल्लत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इल्लत और मालूल का राबता कब बरकरार होता है, कि जब मालूल क्या हो, मुमकिन हो, इम्कान की वजह से इल्लत के मोहताज हैं, तो लिहाजा ये इम्कान कभी खत्म नहीं होगा, बस इल्लत की तरफ एहतियाज भी कभी खत्म नहीं होगी। बदवाज़े बस मालूल अपने हुदूस में भी और अपनी बका में भी, यानी अपनी इब्तिदा में भी, अपने इस्तिमरार और बका के अंदर भी इल्लत का मोहताज रहेगा। इस नजरिए को अगर हम देखते हैं आकर, तो फिर क्या है, ये जो साइंसदान कहते हैं, ये जो बाज मुतकल्लमीन कह रहे थे, इनका नजरिया जो बातिल हो जाता है। बात वाज हुई यहां तक? अब यहां पर मैं थोड़ा सा मजीद इम्कान को खोलूंगा ताकि हर सुनने वाले के लिए मतलब वाजे हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर कोई सही नजरिया जो है वो उसको समझना चाहे, उसके लिए समझना जो है वो आसान हो जाए, और फिर इसकी मिसालें दूंगा, जिस तरीके से इन्होंने मिसालें दी हैं, घड़ी की मिसाल दी है, अमारत और मिस्त्री की मिसाल दी है, या इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो मिसालें देते हैं, जो हकीकी राबता है इल्लत और मालूल का उसको बयान करूंगा, फिर उसको समझाने के लिए जो मुख्तलिफ मिसालें हमारी मदद कर सकती हैं समझने के लिए उसको बयान करूंगा, तो वाज़े और रोशन हो जाएगा कि खुदावंदे मुताल इस कायनात के हर फ़ेल, हर जर्रे, हर अमल के अंदर नक्श व किरदार रखता है। अगर इरादा इलाही शामिल हाल ना हो, अगर मर्जी परवरदिगार जो है वो शामिल हाल ना हो, तो कोई भी फ़ेल इस कायनात में अंजाम नहीं पा सकता। इसको बयान करने की मजीद ज़रूरत है, चूँकि अजान का वक्त हो गया है, इंशाल्लाह कल इसको बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।